लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन नए शहीदों के लिए याचना करते हैं जो विश्व के विभिन्न भूभागों में सुसमाचार के खातिर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी प्रार्थना है कि वे अपने साहस और मिशनरी उत्साह से कलीसिया को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है पुण्य शनिवार एवं पास्का जागरण पर एक चिंतन कार्यक्रम। प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और डीकन प्रमोद कुजूर। श्रोताओ, हम पुण्य सप्ताह में हैं। कल हमने पौत्र कलीसिया के साथ यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, क्रूस मार्ग की यात्रा, क्रूस काट पर उनकी मृत्यु और उन्हें कब्र में रखे जाने तक उनका साथ दिया, उन पर मनन चिंतन किया। आज पुण्य शनिवार, चालीसा काल, पौत्र सप्ताह और पास्का दिवस त्रय का अंतिम दिन है। यह दिन पुण्य शनिवार, दिव्य शनिवार, आनंदमय शनिवार, काला शनिवार के नामों से जाना जाता है। काला शनिवार क्योंकि यह दिन यीशु के कब्र में पड़े रहने का दिन है। यह महान शोक का दिन है। काला रंग मौत और शोक का प्रतीक है। आज कैथोलिक कलीसिया माता मरिया के साथ अपने पुत्र की मौत के मातम में मौन प्रार्थनाओं और यीशु के मरण एवं दफन संबंधी सुसमाचार पाठों पर मनन चिंतन करती हुई प्रतीक्षा में समय व्यतीत करती है। श्रोताओ, आज भी गिरजाघरों में कोई साज सज्जा नहीं है। गिरजाघर की संदूक खाली और खुले पड़े हुए हैं। इस दिन गिरजाघर में कोई सामूहिक प्रार्थना, क्रिस्त याग या धर्म विधि का अनुष्ठान नहीं किया जाता। आपने एक बात और गौर किया होगा कि चारों सुसमाचार में हम यीशु के दुख भोग, क्रूसमरण और दफन तक ही उल्लेख पाते हैं। शनिवार का दिन माता मरिया और चेलों ने कहां और किस तरह बिताया, इसका उल्लेख हम नहीं पाते। पर यह तो हम समझ ही सकते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में माता मरियम और चेलों ने मिलकर अपने प्रिय को खोने का गम, भय, डर, निराशा, हताशा को एक दूसरे के साथ बांटा और एक दूसरे को ढाढ़स दिया। संत योहन के सुसमाचार में हम पाते हैं कि क्रूस पर मरने से पूर्व प्रभु यीशु ने घोर पीड़ा के क्षण में भी अपनी प्रिय माता को घोर दुख की घड़ी में बिलखता हुआ अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी माता को अपने प्रिय शिष्य को सौंपा।
ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया।
इस प्रकार यीशु ने अपनी माँ को प्रेरित योहन को सौंपते हुए उन्हें कलीसिया और संपूर्ण मानव जाति की माता बना दिया। हमारे प्रति उनकी दया, खासकर उनके प्रति जिन्होंने अपनी माताएं खो दी हैं, वे अनाथ जिन्होंने कभी अपनी माँ को नहीं देखा पर दिल में एक बार देखने की तमन्ना रखते हैं, यीशु ने हमें दिलासा दी है। यह जानकर कि जो यीशु ने योहन से कहा उसका वही अर्थ हमारे लिए भी है। मरियम हमारी माँ है, पूरे विश्व के लोगों की माता। मानव जाति की महान मुक्ति योजना के पूरी होने के लिए माँ मरियम के बुलावे और उनकी उल्लेखनीय भूमिका पर चिंतन करना आज का दिन अति उत्तम है। पवित्र धर्म ग्रंथ में हम पाते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मानव जाति को पाप और बुराई की जंजीरों से मुक्त करने के लिए मरियम को चुना। स्वर्गदूत गैब्रियल ने अभिवादन कर यीशु के जन्म का संदेश मरियम को दिया। उनके संदेश के अंत में मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस बुलावे को पूरा करने के लिए माता मरियम ने बड़े बड़े कष्ट उठाए और दुख भोगा। संत लूकस के सुसमाचार में हम पाते हैं कि यरूशलेम मंदिर में बालक येसु को समर्पित करने के बाद धर्मी तथा भक्त पुरुष शिमेयोन ने बालक को अपनी गोद में ले ली और ईश्वर की स्तुति कर फिर मरियम से कहा,
देखिए इस बालक के कारण इसराइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बैधेगी।
श्रोताओ, उस वक्त तो शायद मरियम सिमेयोन की बात समझ न पाई होगी, पर इन सब बातों को संचित कर रखा। माता मरियम के हृदय को एक नहीं बल्कि 7 दुख रूपी तलवार ने बेधा था। कलीसिया की माता के इन दुखों को याद करना हम सबके लिए हितकर है, क्योंकि इससे हमें अपने दुख सहने का संबल प्राप्त होता है। क्रूस पर टंगे येसु ने हमसे कहा था कि मरियम ही हमारी माता है। इस दुखद घड़ी में इसलिए हम सब मिलकर येसु की माता, हम सब की माता कलीसिया की माता मरियम से प्रार्थना करें। माता मरियम ने दुख का सामना करते हुए और प्रभु पर भरोसा रखते हुए शनिवार के दिन को व्यतीत किया। श्रोताओ, 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा शुरू किए गए यूक्रेन के सैन्य बलों के हमलों ने न केवल यूक्रेन के अनेक शहरों को तबाह किया, बल्कि लाखों की संख्या में बच्चों, युवाओं, लड़कियों, महिलाओं और बुजुर्गों को देश से निकलने और पड़ोसी देशों में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किया। संत पापा फ्रांसिस ने पिछले 12 महीनों में यूक्रेन, शहीद यूक्रेन के लिए 150 से अधिक बार अपीलें की और मध्य पूर्व में युद्ध विराम के लिए 60 से अधिक अपीलें की। साथ ही न्यायपूर्ण और शांति की दिशा में रचनात्मक प्रयासों के लिए राष्ट्रों के नेताओं को निमंत्रण भी दिया। मरे हुओं को, उन लड़कों को देखकर दुख होता है जो कभी वापस नहीं आएंगे, यह असहनीय है। ठीक 1 साल पहले 13 मार्च को संत पापा ने ये शब्द कहे थे। अपने परमाध्यक्ष बनने की 10वीं वर्षगांठ पर उन्होंने अपना दर्द साझा किया, जिसे दुनिया भर की हजारों महिलाओं ने महसूस किया था। वाटिकन न्यूज द्वारा निर्मित अपने पहले पॉडकास्ट में उनके विचार विशेष रूप से यूक्रेन में आक्रामकता युद्ध में मारे गए युवाओं के लिए निर्देशित थे, जिन्हें उन्होंने हमेशा और तुरंत शहीद या पीड़ित के रूप में वर्णित किया था। अक्टूबर में हमास के आतंकवादी हमले और इजरायली सैन्य प्रतिक्रिया के बाद पवित्र भूमि में तीव्र पीड़ा विस्फोट के साथ और भी गहरा हो गया है। हमास द्वारा इजरायल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में 33 बच्चों सहित 1,200 लोग मारे गए और 240 से अधिक बंधक बनाए गए। हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी कि इजरायल के खिलाफ हमास के हमले के बाद युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक यानी 5 महीनों में गाजा में मरने वालों की कुल संख्या 31,000 से ज्यादा हो गई है और 73,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, यह टुकड़ों में चल रहा तीसरा विश्व युद्ध है। गाजा में बच्चे बड़े पैमाने पर सदमे और दुख के दौर से गुजर रहे हैं। सीरिया से यूक्रेन तक और हैती से म्यांमार तक आबादी वाले इलाकों में विस्फोटक हथियारों के इस्तेमाल से जान माल की भीषण हानि हुई है। गत सप्ताह बुधवार आमदर्शन समारोह के अंत में संत पापा फ्रांसिस ने युद्ध अपराधों के पीड़ितों को याद करते हुए विश्वासियों को उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा, ताकि सभी के हृदय परिवर्तित हो सके। उन्होंने चल रहे यूक्रेन युद्ध में मारे गए यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की माताओं के लिए प्रार्थना करने के लिए भी आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, क्रूस के सामने खड़ी हमारी माता मरियम को देखते हुए मेरे विचार युद्ध में मारे गए यूक्रेनी और रूसी सैनिकों की माताओं के पास जाते हैं। वे मृत बच्चों की माताएं हैं। आइए हम इन माताओं के लिए प्रार्थना करें। इसी तरह अफ्रीका के दक्षिण सूडान, प्रजातांत्रिक गणराज्य कोंगो, नाइजीरिया, सोमालिया, टूनिशिया आदि देशों में गृह युद्ध और आतंकवादियों के बीच हिंसा में लाखों लोग मारे गए, लाखों बेघर हो गए और लाखों लोग शांति और जीवन बचाने के लिए यूरोपीय देशों की ओर रुख किया। अपने भविष्य की तलाश में भूमध्य सागर पार करने के दरमियान अनेकों जहाज समुद्र में डूब गईं, कितनों की जानें चली गईं, इसकी कोई गिनती नहीं। भाग्यशाली ही समुद्र पार कर पाए, वहाँ भी उनके दुखों का अंत नहीं। रास्ते में ही वे मानव व्यापार के शिकार बन गए। आज हजारों लाखों लोग अनेक तरह के दुख सह रहे हैं। संत पापा ने खजूर रविवार को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में 60,000 तीर्थ यात्रियों और विश्वासियों से मॉस्को में आतंकवादी हमले के शिकार लोगों के लिए दुख व्यक्त करते हुए कहा, मैं पिछली शाम मॉस्को में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के शिकार लोगों के लिए अपनी प्रार्थना का आश्वासन देता हूँ। प्रभु अपनी शांति से मृतकों का स्वागत करें और उनके परिवारों को सांत्वना दें। वे उन लोगों के दिलों को बदल दें जो इन अमानवीय कार्यों की योजना बनाते, व्यवस्थित करते और अंजाम देते हैं। संत पापा ने कहा, यह ईश्वर को अपमानित करता है जिन्होंने आदेश दिया था, हत्या मत करो। उन्होंने युद्धग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम उनके लिए अपना हृदय खोलें, केवल वे ही हमें दुष्टता, घृणा और हिंसा से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे दयालु हैं और पापों को क्षमा प्रदान करते हैं। आइए हम गाजा के बारे में सोचें, जो बहुत अधिक नुकसान झेल रहे हैं, और हम युद्धग्रस्त अन्य जगहों को भी याद करें। श्रोताओं, आइए हम विश्व भर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे युद्ध से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें। आज का कुछ पल निकालकर उनके दुख और कष्ट को समझने की कोशिश करें, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, जिनका भविष्य अंधकारमय है। रूस और यूक्रेन की उन हजारों माताओं को याद करें जिन्होंने अपने जवान सैनिक बेटों को युद्ध में खोया और जिन्हें एक कफन तक नसीब नहीं हुआ। फिलिस्तीन और गाजा पट्टी की उन माताओं को याद करें जो अपने बच्चों को भूख और प्यास से बिलकते हुए मरते देख रही हैं। यूक्रेन की हजार माताओं को याद करें जो अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोसी देशों में शरण लिए हुए हैं। उन सभी दुखित लाखों लोगों को आइए हम करुणामयी माता मरियम के सुपुर्द करें। अंतिम ब्यारी के कमरे में जिस तरह माता मरियम ने चेलों को सहारा दिया, आज वे उन सभी का सहारा बने। आइए आज हम उन लोगों की याद करें, उन्हें भी माता मरिया की छत्र छाया में रखें। माता मरिया से ज्यादा कौन उनके दुख को समझ सकता है। अपने पुत्र के आदर्श का अनुकरण करते हुए वे हम सब के लिए हमारे अपने जीवन की यात्रा में ईश्वर की योजना को पूरी होने देने का महान आदर्श हैं।
पुण्य शनिवार की मध्य रात्रि से पूर्व कलीसिया पास का जागरण करती है। जागरण में हम उत्साह पूर्वक महिमा में पुनर्जीवित ख्रिस्त से मिलने और उनका अभिवादन करने की प्रतीक्षा करते हैं। पास का जागरण की धर्म विधियां और पास का उत्सव मात्र भूतकाल की घटना की सामान्य यादगार मात्र नहीं है। प्रभु येसु पहले व्यक्ति है जिन्होंने पुनर्जीवित होकर मृत्यु पर विजय पाई है, और इसी पुनरुत्थान की गरिमा एवं शक्ति का अनुभव करने के लिए हम पास का जागरण समारोह में भाग लेते हैं। प्रभु येसु ख्रिस्त का पुनरुत्थान ही हमारे विश्वास की नींव है, और इसी कारण संत अगस्तीन ने पास का जागरण को सभी प्रकार के जागरण की जननी कहा है। यही कारण है कि पास का जागरण की धर्म विधियां प्राचीन काल से ही अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और भविष्य में भी मानी जाती रहेंगी। पास्का जागरण समारोह चार भागों में संपन्न होता है। पहला, प्रकाश की धम्म विधि। यह भाग आग या प्रकाश पर केंद्रित होता है, जो यीशु ख्रिस्त का प्रतीक है। उन्होंने अपने आप को संसार की ज्योति घोषित किया है। संसार की ज्योति मैं हूँ। इस समय नए आग की आशीष की जाती तथा इस नए आग से पास्का की मोमबत्ती जलाई जाती है। पास्का मोमबत्ती को क्रूस के चिन्ह एवं यूनानी अक्षर अल्फा एवं ओमेगा से चिन्हित किया जाता है, जिसका अर्थ है यीशु ख्रिस्त अभी और सदा मनुष्यों के साथ हैं। तत्पश्चात लोबान की 5 कीलों को पास्का मोमबत्ती में जड़ दिया जाता है, जो ख्रिस्त के 5 घावों को इंगित करता है, जो उनके हाथों, पैरों और बगल में भाले से छेदे जाने पर हुआ था। पास्का मोमबत्ती से विश्वासियों की मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। यह प्रतीक मानव को पाप और दासता से बाहर निकालने की घटना को इंगित करता है। इसके बाद याजक पास्का मोमबत्ती लिए प्रभु के मंदिर की ओर विश्वासियों की अगुवाई करते हैं। पास्का जागरण के दूसरे भाग में शब्द समारोह होता है। पुराने और नए व्यवस्थान से पाठ लिए जाते हैं। श्रोताओं, आपने गौर किया होगा कि आज के पाठ पास्का मोमबत्ती के निकट से उसके प्रकाश में पढ़े जाते हैं, जो ख्रिस्त का प्रतीक है। ख्रिस्त ही धर्म ग्रंथ की कुंजी हैं और वे ही धर्म ग्रंथ को पूर्णता प्रदान करते हैं। उसके बाद तीसरे भाग में बपतिस्मा के जल की आशीष, बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण होता है। बपतिस्मा में हम पाप और शैतान का मार्ग छोड़कर ईश्वर के नियम के पालन की प्रतिज्ञा करते हैं। बपतिस्मा में हम ख्रिस्त के साथ मरते और फिर जी उठते हैं और हमारे अंतिम मृत्यु एवं पुनर्जीवित होने तक ख्रिस्त में मरते और जीवित होते रहेंगे। और चौथे भाग में यूखरिस्ट समारोह संपन्न किया जाता है। पुनरुत्थान से पूर्व अपने मृत्यु में प्रभु येसु ने समस्त मृतकों का साक्षात्कार किया तथा उनमें नव जीवन, परिपूर्ण जीवन और अनंत जीवन की आशा का संचार किया। अपने अनमोल लहू द्वारा अनंत जीवन की खोई हुई विरासत को हमारे लिए पुनः प्राप्त किया। अतः प्रभु का पास्का न केवल मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान है, वरन सारी मानव जाति हेतु मृत्यु से जीवन में प्रवेश करने का पास्का है। पास्का प्रभु के साथ नए जीवन का प्रतीक है, जो औरों को प्रेम कर सके, माफ कर सके, दूसरों के दर्द को समझ सके और मानव को मानव समझ सके। पास्का हमें आशा, विश्वास और भरोसे में रहने का ठोस संदेश देता है। यह सारी मानवता में व्याप्त हर प्रकार के डर, भय, शंका, हताशा और निराशा से हमें ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त ने हमारे जीवन की सारी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाई है। हम आनंद मनाएं, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। वे हमारे बीच विद्यमान हैं।
जी उठे मेरे प्रभुवर, जी उठे प्रभु यीशु का प्रचार हम करेंगे, करते रहेंगे। जी उठे प्रभु यीशु का प्रचार हम करेंगे, करते रहेंगे। जी उठे प्रभु यीशु ही हमारा शुभ समाचार, हमारा शुभ समाचार। ख्रिस्त की जय, ख्रिस्त की जय, ख्रिस्त की जय।